देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत है गीता के 13वें अध्याय के श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, अमानित्वमदम्भित्व महिंसाक्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। इस तरह आगे के अनेक श्लोकों में ज्ञानी का लक्षण बताया गया, जो समझदार है, जो समझता है, जो स्मार्ट है, जो वाइज है, उसका क्या सिम्टम है, क्या कैरेक्टरिस्टिक से उसकी चर्चा कर रहे हैं। दो चार चीजों के ऊपर हमने पहले चर्चा की। जो समझदार व्यक्ति, उसके अंदर प्राइड नहीं होता, इज फ्री फ्रॉम हिपोक्रेसी, उसके अंदर वायलेंस के अंदर, मन के अंदर कहीं कोई वायलेंट सोच नहीं होता, वो क्षमा करना उसकी स्वभाव बनता है, उसके जीवन में उसकी जो बिहेवियर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सिंपल होता है। और अगली चर्चा जो हम आज करेंगे, आचार्योपासनम। कोई भी ज्ञान जब आपको पूरा लेना है, अगर आपको ऊपरी ऊपरी लेना है, तो आजकल तो वैसे भी बहुत सारे साधन है, पर आपको किसी चीज को सचमुच फैक्चुअली समझना है, डीपली समझना है, आपको किसी ना किसी जो एक्सपर्ट है, जो ज्ञानी है, समझदार है, उसके पास जाना पड़ेगा। उसी को कहते हैं आचार्य उपासन। आचार्य मतलब टीचर या गुरु, जो जानता है, समझता है, उसकी उपासना, उसके पास जाना, उसके पास बैठना। अब आजकल क्योंकि गुरु लोग पढ़े लिखे इतने होते नहीं है, उपासना का अर्थ कर दिया उनकी पूजा करना, क्योंकि बैठने से कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं है, तो उनके आरती उतारो। बात समझ में आई? मतलब क्योंकि आजकल आचार्य लोग, जो गुरु लोग आपको दिखते हैं, अब वो खुद ही इतने नहीं जानते हैं, उठपटांग अखबार पढ़ के नॉलेज कलेक्ट करते हैं, तो अब वो उपासना का अर्थ वो नहीं रहा कि आप गुरु के पास बैठ के कुछ सीखो, बस गुरु की आरती उतारते रहो, पर अर्थ ये नहीं है। अर्थ है कि आपके जीवन में आप जिसमें भी आगे बढ़ते हैं, जो व्यक्ति गुरु के पास बैठा है, गुरु के पास बैठने का मतलब नहीं कि बस आप सिर्फ ये धर्म कर्म के पास गुरु, आप जिस भी विषय में है, आप मेडिकल साइंस में है, आप इंजीनियरिंग में है, आप आर्ट में, क्राफ्ट में है, और आप आत्मज्ञान के, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, जिस भी विषय में आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपके गुरु के पास बैठ के सीखा नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा रहता है। क्योंकि आपको, इवन आप बिजनेस में भी है, आपको कोई जो अपने जीवन के अनेक वर्षों तक तपस्या करके सीखा है, जाना है, वो किताबों में नहीं मिलता, वो आपके गूगल में सर्च करने से नहीं मिलता। आजकल तो आप जिसको भी देखेंगे हर विषय में वो एक्सपर्ट बनता फिरेगा। क्यों? क्योंकि गूगल गुरु है, कुछ भी सर्च करो वो गूगल में आ जाता है और सबको सब मिल जाता है। अभी पिछले गुरुवार को हमारी क्लास होती है योग दर्शन की, तो कुछ चर्चाएं थी, हमारे एक जो विद्यार्थी आते हैं, तो उन्होंने अगले दिन एक लंबा सा ईमेल लिखा, बोले मुझे कुछ नई चीज आपने उस दिन बताया तो पता चला, तो मैंने गूगल में सर्च किया, क्यूरियोसिटी हुई उसको ज्यादा समझने के लिए, पर मैंने इतने सारे उसमें सर्च किया तो इतने सारी चीजें आपने जो बोला वो तो कितनी कंट्राडिक्टरी बातें, तो मैं आपकी मानू या किसकी मानू? मैंने कहा आपकी मर्जी, आप गूगल के मान लो। तो गूगल के मानोगे तो फिर किसकी मानोगे, क्योंकि वहां 500 बातें। तो कोई ना कोई ऑथोरिटी आपको चाहिए जो आपको बताए जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हो, जिस रास्ते पर चलना चाहते हो। और ज्ञानी व्यक्ति का यह भी एक लक्षण है, सिम्टम है, जो किसी गुरु से, आचार्य से पढ़ा है। हमारे यहां एक एक कहावत है, जो गुरु के पास से नहीं सीखा उस व्यक्ति का ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। आप कहीं से भी, आप कुछ भी सीखें, किसी ऑथोरिटी व्यक्ति से जरूर सीखना पड़ता है। अब हजारों किताबें पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए डॉक्टर है मेडिकल साइंस में, आपको बाजार में हजारों तरह के बुक्स मिलेंगे, लिखने वाले बहुत बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार जीतने वाले होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उसके बावजूद भी आप किताबें पढ़ के जा करके आप किसी का इलाज करिए तो आप 100 में से 90 रोगियों को मारेंगे। तो आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, जिसके साथ आप रहते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं, सामने देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर इंडिविजुअल अलग होता है, किताब में तो जनरल नॉलेज होता है। इसीलिए जब आप उस फील्ड में जाते हैं आपको कहते हैं आप रेजिडेंसी करो, इतने साल तक रेजिडेंसी करोगे तभी आप डॉक्टर बनोगे। रेजिडेंसी क्या होता है, किसी प्रोफेसर के साथ रहो और उसको प्रैक्टिकल में करो। हर फील्ड में यही है, जो किसी गुरु के पास नहीं रह करके सीखता है, प्रैक्टिकली नहीं सीखता, उसका ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। आप सैकड़ों किताबें पढ़ लीजिए, सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक सर्वे ढूंढ करके निकाल दीजिए। इसीलिए कहा जो ज्ञानी होता है वो जरूर आचार्यवान होता है। इसीलिए प्राचीन काल में आचार्यवान पुरुषो वेद, वही पुरुष ज्ञानी होता है जिसका कोई टीचर है, जिसका कोई गुरु है, जिसको जो जिसके पास कोई फिजिकल गुरु है जहां से उसने सीखा है। अगला है शौचम। शौच का अर्थ होता है क्लीनिनेस, सफाई रखना। वैसे तो हम सब बड़े साफ रहते हैं, हो सकता है बहुत हमारे में से साफ नहीं रहते हो, पर सफाई का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ कपड़े साफ रखना, अंदर या बाहर कुछ भी साफ हो, यह भी ज्ञानी का एक लक्षण होता है। एक स्मार्ट व्यक्ति का, एक समझदार व्यक्ति के, ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है, और खास करके जिसने खुद को जाना है ये उसके लक्षण में भी आता है कि जो सफाई को, पवित्रता को, पवित्रता का अर्थ कोई डिवाइन प्यूरिटी का अर्थ ना लीजिए, सिंपल मीनिंग है क्लीनलीनेस, सफाई रखना। वो सफाई आपके शरीर की हो, आपके कपड़े की हो, आपके घर की हो, आपके पड़ोस की, आपके आपके सामने की हो, या आपके अंदर की हो, आपके दिल की हो, आपकी मन की हो। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो अंदर से बहुत गंदे हैं, बाहर से बड़े साफ दिखते हैं। पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड आपको मिलेगा जो अंदर बाहर से बड़े चकाचक साफ सुथरे दिखते हैं पर अंदर से बहुत झूठ भरे, बेईमानी से भरे हुए होते हैं। एक दूसरे वर्ग आपको मिलेंगे जो अंदर से बहुत साफ होंगे पर बाहर से उनको कोई केयर नहीं करते क्या होता है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो अंदर से और बाहर से सफाई रखता है, इसलिए पतंजलि जब योगी की लक्षण करते हैं कि उसको कैसा करना चाहिए, कहते हैं दो तरह के सफाई है। ये बाहरी सफाई जो आप पहले जमाने में मिट्टी से, पानी से, हवा से साफ करते थे, और दूसरी सफाई होती थी बाहरी सफाई मेध्य आहार से, ऐसा खाना जो अहिंसक हो, जिसमें कोई हिंसा नहीं की गई हो, जिसमें कोई वायलेंट वे नहीं यूज किया गया हो, ऐसा खाना खाना, ये बाहरी सफाई है। अब दिस क्लीनिनेस इज एक्सटर्नल व्हेन ब्रॉट अबाउट द अर्थ एंड अर्थ एंड वाटर की जगह आजकल आप शैम्पू, साबुन और डिटर्जेंट बहुत सारी चीजें आ गया है, और ये तो एक साइड है, पर दूसरा साइड है कंसिस्ट इन द ईटिंग अ प्योर थिंग। व्हाट इज द प्योर थिंग, शब्द है मेध्य, मेध्य का मतलब होता है प्यूरिटी का यहां डेफिनेशन है, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई हो, ऐसा खाना, ऐसा भोजन जिसके साथ किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये बाहरी सफाई है, और अंदर की सफाई कहते हैं इट इज इटर्नल व्हेन इट कंसिस्ट इन द वॉशिंग अवे ऑफ इंप्यूरिटीज ऑफ माइंड। मन की इंप्यूरिटीज क्या है, वही गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, अपना परायापन, छोटा कंप्लेक्स, जो दूसरों को छोटा दिखाने की या खुद को छोटा समझने की, जिनके कारण हमसे गड़बड़ियां होती हैं, जिनके कारण हम बुरे काम करने को मजबूर होते हैं, जिनके कारण हमसे हिंसा या पाप होते हैं, वो क्या क्या है, लालच हो, गुस्सा हो, इल्यूशन, मोह हो, डिल्यूशन हो, वगैरह वगैरह, तो इसको भी अगर हम मन में प्यूरिफाई करें या बाहर प्यूरिफाई। ज्ञानी व्यक्ति का मतलब होता है जो अंदर से और बाहर से दोनों परिस्थिति से साफ रखता हो, दोनों बाहर और अंदर में बैलेंस मेंटेन करता हो सूची में। अगला है स्थैर्यम, स्थिरता। यह बड़ी ज्ञानी का एक लक्षण है। बहुत सारे लोग दिखेंगे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े ऊंचे पोस्ट पर भी हैं, बड़े बड़े फिकल माइंडेड हैं। उनको खुद ही नहीं पता होता है शाम को क्या बोला और अगले दिन सुबह क्या बोला, उनको पता नहीं होता है। घर में भी बहुत झगड़ा इस बात के लिए होता रहता है, शाम को कुछ डिमांड करते हैं सुबह दूसरा डिमांड हो जाता है, पता ही नहीं होता है। ये खुद के लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, और ऐसा लोग जिसके जिनके साथ काम करते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। आपका बॉस अगर इस टाइप का मिल जाए, फ्रिकल माइंडेड वाले, काम करना कितना मुश्किल होता है। तो पर समझदार आदमी का लक्षण है जो बहुत स्टडी हो, जो शांत हो, काम हो, जिसका निर्णय डिसीजन वेल थॉट हो, जिसको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और अगर बार बार चेंज होता है, इसीलिए गीता में और हमारे शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कही है, कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। हे अर्जुन, अगर तुम्हें कोई चीज प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो है कि तुम अपनी बुद्धि को व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ यहां हिंदी वाला व्यवसाय नहीं, बिजनेस, दृढ़ निश्चय वाला बनाओ। जो डिसाइड करते हो उस पर टिके रहो, क्योंकि आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले तुम अपने आप को बड़ा धनुर्धर वीर, तुम्हें इस बात की शिकायत थी कि तुम्हारे राज्य को कौरवों ने छीन लिया, उनसे हमें वापस लेना है, तुम्हारे ऊपर उन्होंने बड़े जुल्म किया है, तुम्हारी पत्नी के ऊपर जुल्म किया, तुम्हारे भाइयों के ऊपर जुल्म किया, तुम्हारे मां बाप के ऊपर किया, हर तरह के जुल्म किया, और उसका एक ही उपाय है और वो किसी भी तरह के कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो लड़ना एकमात्र उपाय बचता है। तुमने लड़ाई के लिए प्लानिंग भी की, दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा भी किया, लड़ाई के मैदान में खड़े होकर के तुम्हें पता है कौन कौन लड़ने वाले हैं, तुम लड़ोगे, तुम्हारे भाई लड़ेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार लड़ेंगे, सामने तुम्हारे भाई लड़ेंगे, तुम्हारे गुरु लड़ेंगे, ये सब तुम्हें पहले भी पता है। लड़ाई के मैदान में खड़े होकर कहते हो कि नहीं, ये तो पाप है, कैसे मारूं गुरु को, दादाजी को, भाइयों को, इससे अच्छा है कि मैं मुझे वो ही मार दें। ये कोई सन्यासी की बात नहीं है ऐसी बातें करना। ये कोई, ये सुनने में अच्छा लगता हो कि मैं कैसे मारूं, ये पाप होगा, ये बड़ा वीक आदमी का, वीक माइंडेड आदमी का लक्षण है। जो कल तलवार लेकर के मारने को तैयार था और आज बैठ करके कहते हैं मैं कैसे मारूं, उस आदमी पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आप उसमें बिजनेस में भी बैठा होगे, वो वहां टिक नहीं पाएगा। आप उसको आर्मी में भी बैठा होगे, टिक नहीं पाएगा। पॉलिटिक्स में बैठा होगे, टिक नहीं पाएगा, वो कहीं भी नहीं टिक पाएगा। तुम्हें अगर तुम्हारे अंदर इतनी इमोशंस हैं, तो 2 दिन पहले कहां था, 1 दिन पहले कहां था, 6 महीने से कहां था, 1 साल से कहां था। ये तो तुम्हारा डिसीजन था कि तुम्हें लड़ना है, और तुम खुद कमांडर बन के आए हो, कैप्टन बन के आए हो, और कौन कौन लड़ेंगे ये भी तुम्हें कल तक पता था, क्यों लड़ाई होगी ये भी तुम्हें कल तक पता था, सालों से पता था। तब तुम्हारा एक अलग डिसीजन था, आज डिसीजन अलग है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं तुम कुछ भी करो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पहले बुद्धि को निश्चय करो, स्टडी करो, एक दृढ़ निश्चय बना के रखो, फिकल माइंडेड मत बनो। अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर। ये बड़ा सीखने लायक चीजें हैं जी। ये संस्कृत में एक श्लोक है कि उस व्यक्ति की खुशी भी बड़ी खतरनाक होती है जिसका दिमाग शांत नहीं हो, जो फ्रिकल माइंडेड है, जो डिसीजन चेंज करता हो, जो कंस्टेंटली एक चीज पर स्टैंड नहीं कर पाता हो, उस व्यक्ति व्यक्ति का प्रसाद भी, प्रसाद का मतलब उसकी, अगर वो आपके लिए भला भी करना चाहता है, बड़ा खतरनाक है, उससे दूर रहना चाहिए। उसकी किसी भी तरह का, उसकी खुशी भी, उसका नाराजगी तो है ही खतरनाक, उसकी खुशी भी खतरनाक होती है। ये रियल लाइफ में भी होती है, बच्चों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, दोस्तों के लिए भी ऐसे। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो निर्णय लेता है सोच समझ के और उस पर टिके रहता है। जितने भी महापुरुषों के आप लक्षण पढ़ेंगे, जितने भी बायोग्राफी पढ़ेंगे आप महान लोगों के, उनमें जो और जो क्वालिटीज हैं, जो सबसे कॉमन क्वालिटी आपको मिलेगी, जो हर महापुरुष में एक क्वालिटी, वो कोई ग्रेट साइंटिस्ट हो, ग्रेट फिलोसोफर हो, ग्रेट सोशल सर्वेंट हो, एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर हो, किसी भी फील्ड में वो ग्रेट हो, उसके नीचे जो कॉमन फैक्ट होगा वो होगा कि वो सबके सब जो डिसीजन लेते थे उसमें टिके रहते थे। और डिसीजन इसलिए जल्दी नहीं लेते थे, सोच समझ के लेते थे। ये ज्ञानी व्यक्ति का एक लक्षण होता है। और डिसीजन बार बार बदलना, विचारों को बदलना, ये फिकल माइंडेड का लक्षण होता है। और ये लोग खुद के लिए भी नुकसान करते हैं, दूसरों के लिए भी नुकसान करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, यहां भी देखेंगे, भारत में भी देखेंगे, बीमार पड़ते हैं तो सालों तक ठीक नहीं होते हैं। क्यों ठीक नहीं होते हैं? पहले जाएंगे डॉक्टर के पास, उसने दवाई दी कि ये बीमारी है, आपको 15 दिन खानी पड़ेगी, 1 महीने खानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट करेंगी पड़ेगी। 7-8 दिन किया, किसी ने बोल दिया नहीं ये सब नहीं, वो आयुर्वेद में ठीक होता है, चले जाओ। वो चला गया आयुर्वेद में, इसको छोड़ दिया। 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन उसको खाने लगा, किसी ने उसको समझा दिया ये क्या तुम पुराने चीजों में पड़ गया, ये सब बकवास है, कुछ मॉडर्न दवाई लो। जी वो लिया, काम नहीं करता। नहीं, वो होम्योपैथिक वाले बड़े अच्छे होते हैं, उसको ट्राई करो। वो जिंदगी भर होम्योपैथी ट्राई करता है, सिद्ध ट्राई करता है, चाइनीज ट्राई करता है, आयुर्वेद ट्राई करता है, एलोपैथी ट्राई करता है। और वो आजकल तो और भी बहुत सारे पैथी आ गए हैं, कितने पैथी है तो नाम गिनाए खत, वो सब ट्राई करता है, बीमारी ठीक नहीं होती है। कितने बड़ा लाइलाज बीमारी है, बीमारी लाइलाज नहीं है, वो तुम्हारा माइंड लाइलाज है। इतने फिकल माइंडेड हो कहीं तुम टिक नहीं पाते हो, बेचारा ठीक कौन कराएगा तुम्हें। इसीलिए बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक होती नहीं है, जो ठीक हो सकती है, क्योंकि वो बदलते रहे, उनका दिमाग कहीं टिकता नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं, किसी चीज को समझते नहीं, किसी चीज पर भरोसा नहीं, बदलते रहते हैं। ज्ञानी आदमी वो होता है जिसका निर्णय निश्चय होता है। अगला है आत्मविनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वन्स इमोशन बिहेवियर एंड डिजायर इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल डिमांड्स। जब हम समाज में रहते हैं, नेचुरली बाहर से बहुत सारे चीजें डिमांड्स रहता है हमें रिएक्ट करने के लिए, हाथ से, मुंह से, कान से, आंख से, नाक से, शरीर से, पेट से, जीव से, बहुत सारे तरह के रिएक्ट करने को मन करता है। सामने बढ़िया बढ़िया खाना रखा है, आपको मन करेगा खाने के लिए, किसी ने आपको 2-4 चांटा लगाया, हाथ उठेगा मारने के लिए। पर अगर आप सब कुछ करते जाओगे जो मन बोलता रहता है, फिर आपका ही जिंदा रहना खतरनाक हो जाए। वैसे हम सब कंट्रोल करते हैं, मजबूरी में हो, डॉक्टर के कहने पर हो, कुछ भी कारण से, फियर के कारण हो, पर अगर वो कंट्रोल जो हम फियर के कारण, डर के कारण करते हैं, कानून के डर के करते हैं, बीमारी के डर के कारण करते हैं, कोई कुछ कहेगा इसके डर के करते हैं, वो अगर डर खत्म हो जाए पर आपका सेल्फ रेगुलेशन बन जाए तो आप ज्ञानी बन जाएंगे। अगर डर के कारण कंट्रोल करते हैं तो आप आम आदमी है, जहां डर नहीं है फिर आप करेंगे। पुलिस सिस्टम खत्म हो जाए, कोई पनिशमेंट नहीं हो, कोई जज, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई पुलिस सिस्टम नहीं, सो कॉल्ड ईमानदार लोग हैं, भद्र व्यक्ति हैं, जेंटलमैन है, जेंटल लेडीज हैं, उनमें आपको 60% से ज्यादा मिलेंगे सब 2 मिनट में जेंटलनेस छोड़ देंगे। वो इसीलिए जेंटल नहीं है कि वो दिल से जेंटल बनना चाहते हैं, वो इसीलिए है कि क्या करें, पकड़े गए इतनी हिम्मत नहीं है कि पुलिस की डंडा खाएं, जेल में सड़ें, रिश्तेदारों की वो ताना सुने, वो हिम्मत नहीं है। पर मन में उपभागत होता है कुछ कर डालो। हम नहीं करते तो जेंटलमैन बनते हैं, पर ज्यादातर जेंटलनेस अगर फियर के कारण है वो तो काम चलाऊ है, कभी कभी जिंदगी भर डर के कारण उसको निभाना पड़ता है, पर वो ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी का लक्षण है जो अपने पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि उसको समझ है इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है। इसीलिए नहीं कि वो किसी से डरता है, इसीलिए नहीं कि उसको कोई लालच है, इसीलिए नहीं कि उसको किसी के प्रति अटैचमेंट है, इसीलिए क्योंकि उसको पता है ये अच्छा है या क्या बुरा है। सेल्फ कंट्रोल जितना व्यक्ति का ज्यादा होगा वो उतना जानवरों से ऊपर उठेगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को सुनते हैं, बस जो हमारा मन कहता है वो करते हैं, तो हम पशु के बराबर होते हैं, क्योंकि पशु यही करते हैं। क्या करते हैं? जो उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, जो उनके अंदर से आवाज आती है, वो वही कर डालते हैं। मारना है तो मारते हैं, भूख लगता है तो खाते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ईश्वर ने हमें अलग से बुद्धि दी है और बुद्धि का उपयोग करते हैं। हम कहां गुस्सा करें कहां ना करें, कभी कभी हम डर के मारे गुस्सा को रोकते हैं। गुस्सा को भी आप रोकते हैं डर के मारे? तो जब हम नौकरी करते हैं, आपके बॉस आपके पास हो, थोड़े आप गुस्सा दिखाओगे? तो अगर वो समझ के कारण पैदा हुआ है, अगर नहीं, हमारी जो मन है हम वो करते हैं बा कर सकते हैं, तो हम जानवर बन जाते हैं। जैसे 60th और 70th एक कल्चर पैदा हुआ वेस्टर्न कंट्रीज में, हिप्पी कल्चर, जो एक तरह का अफ्रीकन और वेस्टर्न मिक्सचर कल्चर है, मिक्सचर ऑफ अफ्रीकन एंड वेस्टर्न कल्चर। आप कह सकते हैं ट्राइबल और अल्ट्रा मॉडर्न और ट्राइबल कल्चर का मिश्रण है, जिसमें क्या है, जो मेरी मर्जी मैं करूंगा, मैं किसी को केयर नहीं, सोसाइटी आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी। मेरी मन करे नंगा घूमने को नंगा घूमूंगा, बाल छोड़ूंगा, मैं 4 महीने तक ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई टोकने वाला नहीं। मैं वो नहाना नहीं, बाल छोड़ देना, नाखून छोड़ देना, जो मर्जी जहां मर्जी गाना नाचना, कपड़े फटे पहने, पुराने पहने, नया पहने, कोई मतलब नहीं। पैंट आधे निकल गया ऊपर रह गया, कोई मतलब नहीं। वो ड्रग्स लेना, जो मर्जी आए करेंगे ना। और कुछ वो हिंदुस्तानी बाबाओं को भी साथ जुड़ गए वो हिप्पी कल्चर के साथ, क्योंकि वहां भी तो बड़ी प्रचलन है, वो तो धर्म के नाम पर हम कर लेते हैं। आपको ड्रग्स खाना है तो आप बन जाओ जी, हम तो भाई बाबा हैं, शिव भक्त हैं, हम तो वो गंजा पीते हैं और भांग खाते हैं जी। मतलब हमारे यहां सब लोगों ने सब सिस्टम बना रखा है, जो करना है करो, भगवान के नाम पर करो, सब हो जाएगा। फिर बड़े प्राउडली आप कर सकते हो, शराब पीना है पीनो, पी लो, होली के नाम पर पी लो, मांस खाना है खा लो, दुर्गा पूजा के नाम पर खा लो, वो गंजा अफीम जो चरस जो खाना है खाओ, शिव के नाम पर खा लो, शिव भक्त हैं। तो हिप्पियों का सबसे ज्यादा जो डेरा बनी वो भारत में बनी। इसीलिए उन दिनों एक फिल्म बना था देवानंद का, आपने देखा होगा, हिप्पियों की। ये कल्चर क्या है, आप अगुन को आप स्टडी करो, जानवरों में उनमें बहुत कम अंतर मिलेगा, कम अंतर मिलेगा। अगर जानवरों से इंसान की कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई डिस्टिंक्टनेस है, तो एक ही है कि आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब क्या है, जो डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग करता है, ये मैं करूं ना करूं, यहां मैं जाऊं ना जाऊं, ये मैं खाऊं ना खाऊं, ये अच्छा है ये बुरा है, मेरा मन करता है उसके बावजूद भी मैं डिसीजन, मैं उसको सोचता हूं, मैं खाऊं ना खाऊं। मेरा मन करता है जाने के लिए पर मैं सोचता हूं मैं जाऊं ना जाऊं। जिस व्यक्ति की डिस्क्रिमिनेटिव पावर जितना अधिक है, अलग करने की क्षमता जितनी अधिक है, वो उतना ज्यादा पशुओं से, जानवरों से ऊपर होता है, वो एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर होता है, उसी को आप ज्ञानी कहते हो। द बॉडी डज अलाउज फॉलो द माइंड सो दैट इफ यू सफिशियंटली कंट्रोल द थॉट वेव्स वी आर एबल टू मोर इजिली रिस्ट्रेन द इंपल्स ऑफ द बॉडी। इसमें दो चीजें हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर या धर्म के नाम पर आत्मनिग्रह करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, वो और एक बीमारी को पैदा देता है। एक तो सेल्फ कंट्रोल ना करना, वो ऑलमोस्ट हम एनिमल किंगडम के पार्ट बन जाते हैं, पशुओं के बराबर बन जाते हैं। एक और कैटेगरी के व्यक्ति हैं जो सेल्फ कंट्रोल करता है इन द नेम ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। और कृष्ण गीता में दूसरे चैप्टर में ऐसे लोगों को कहते हैं, यस्तो इंद्रियाणि संयम संयम्य मनसा विचर, जो इंद्रियों को तो रोक रखा है, मतलब वो ऐसा कुछ करता नहीं है पर उसका मन हमेशा उसमें चिपका रहता है। उसको मन करता है कि मैं किसी को मारूं, वो मारता नहीं है। उसका मन करता है कि मैं कुछ छुटपटा खाऊं पर वो खाता नहीं है। ऐसा व्यक्ति हिपोक्रेट होता है, मिथ्याचारी होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है दूसरों के लिए, कम से कम हो ना खुद के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे सफोकेशन है, उसके अंदर इतनी सारी बेचैनियां है जो कभी बाहर नहीं निकल पाया। इसीलिए जरूरी क्या है, वो सेल्फ रिस्ट्रेंशन, जो सेल्फ कंट्रोल है या रेगुलेशन है, वो माइंडफुली होना चाहिए, सोच समझकर होना चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड है। किसी ने कहा, शास्त्र में लिखा है, मैं जिस रिलीजन में बिलीव करता हूं वहां ये करना पड़ता है, इसीलिए आप करते हैं। तो आप जेन्युइन नहीं बनेंगे, आप हिपोक्रेट बनेंगे। हिपोक्रेट मतलब आपके अंदर तो कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा, और वो और किसी का नुकसान करे ना करे, हम अंदर से बेचैनी में भरे रहेंगे, सफोकेशन में भरे रहेंगे। उसका इंपैक्ट हम मेंटली फिजिकली भी फील करेंगे। इसीलिए अच्छा है कि वो जो सेल्फ रेगुलेशन है वो समझ के साथ पैदा हो। और इसीलिए कहा ज्ञानी का लक्षण है आत्मसंयमी, ज्ञान के साथ हो तभी वो फायदा करता है। अगला श्लोक बोलेंगे, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एक ज्ञानी आदमी के, समझदार आदमी के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है, सिम्टम्स है, उसको श्री कृष्ण गीता में 13वें चैप्टर में वर्णन करते हैं। अभी तक हमने जो 5-6 पढ़े उसके बाद ये है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, उस व्यक्ति का जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो वस्तु संसार में जो सेंस ग्रेटिफाई करने के लिए होते हैं, उससे जिसका डिटैचमेंट हो चुका है, जिसके अंदर किसी भी तरह अहंकार नहीं है, अनहंकार है, इगोलेस हो चुका है, और जो जन्म मतलब बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, जरा मतलब ओल्ड एज, व्याधि मतलब डिजीज, इन सब में दुखों को देख सकता है। दुखों ये छोटी सी बात है, पर जो देख सकता है किसमें, सबको पता है पैदा होने में क्या दर्द है, करने वाले को भी पता है होने वाले को भी, सबको पता है मृत्यु के क्या है, सबको पता है बुढ़ापा का दर्द क्या है, कम से कम दूसरों को देखकर सबको पता है बीमारी में क्या होती है, इन सब में दुख होता है ये सबको पता है, पर उन दुखों को कोई दिल से देखने की कोशिश नहीं करता, कोई जानने की कोशिश नहीं करता, कहीं हम सुधर ना जाएं, कहीं हमारे जो ब्लाइंडली इस सोसाइटी में आगे बढ़ने की होड़ है उसमें कोई ब्रेक ना हो जाए, वो मोटिवेशन में कहीं आंच ना आ जाए कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धनी बनना है, सबसे बड़ा प्रेसिडेंट बनना है, सबसे बड़ा सीईओ बनना है, सबसे आगे बढ़ना। ये जो सबसे आगे बढ़ने की दौड़ है, जो सक्सेसफुल लाइफ की जो चाहत है, कहीं उसमें कोई हम डिमोरलाइज ना हो जाए, इसीलिए इन चीजों को, इन फैक्ट को हम जानबूझ के नकारते हैं। दलाई लामा का नाम सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध बौद्ध गुरु हैं। वो एक बात बार बार कहते हैं कि सच कहिए, इस धरती को आज सक्सेसफुल लोगों से सबसे ज्यादा डर है। जो बच्चा पैदा होकर कहता है कि मैं लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूं, उस बच्चे से इस धरती को सबसे ज्यादा आजकल डर है। क्यों? वो जैसे ही आप सक्सेसफुल होने का एक ही मतलब है, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और उसका वो उसके लिए वो करेगा क्या, और कुछ हो ना हो इस धरती में एनवायरमेंट तो बिगड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें और बढ़ेंगी और मैकेनिकल चीजें बढ़ेंगी और पृथ्वी के धरती के अंदर रहने वाले एनर्जी को खराब की जाएगी, तो इस धरती की जो आयु है, जो उम्र है, वो खतरे में है, क्योंकि लोगों को सक्सेसफुल बनना है। और इस धरती को अगर दुनिया में किससे सबसे ज्यादा डर है, इस एनवायरमेंट को, नेचर को अगर किससे डर है, उस व्यक्ति से, उस बच्चे से जो व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है। और सक्सेसफुल का जो डेफिनेशन है हमारे आपके नजर में, वो इतना खतरनाक है कि नेचर और धरती में जान होती वो घर घर घूम घूम करके बोलती, प्लीज अपने बच्चे को थोड़ा बोलो कम सक्सेसफुल बने, क्योंकि मेरी लाइफ घटती जा रही है तुम्हारे सक्सेस के साथ साथ। तो हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं जानबूझ के। पैदा को क्या फर्क पड़ता है, जवानी है एंजॉय करो, मरना तो सबको है। बूढ़ों का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मैं जवान हूं, पर जो खुद बूढ़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं जवानी में किस किस का मजाक उड़ाया था और अपनी जवानी को कैसे बदतमीजी से यूज किया था। अब बुढ़ापा में दूसरे जवानों को कोसते हैं, ये मुझे पूछते नहीं है, मेरे बुढ़ापा का मजाक उड़ाते हैं। याद करो तुम अपनी जवानी में किस अकड़ में थे, तब तुम्हें अपनी याद नहीं आई दूसरे बुढ़ों को देखकर कि तुम्हारी भी एक दिन बुढ़ापा आएगी। अब आ गई तो तुम भूल गए कि तुम्हारी जवानी में तो क्या क्या गुल खिला रहा था, कैसे दूसरे बुढ़ों के मजाक उड़ा रहे थे। अब तुम्हें याद आती है कि मैं बुढ़ा बन गया, कोई मुझे पूछता नहीं है। ये जनरेशन प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें उस तत्काल उस समय कुछ एंजॉय करना है, जो होगा देखा जाएगा। दूसरों के नाम पर दोष मर देंगे, अगले जनरेशन पर दोष मर देंगे, जवानों पर, तो जवान भी, हमारे जवान बच्चे भी इसी तरह अपने बूढ़े माँ बाप की या बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स की मजाक उड़ाते हैं। उनको उसी मस्ती में जीना है, फिर जब वो बूढ़े हो जाएंगे अपने अगले जनरेशन को गालियां देंगे, कोसेंगे, वो हमें पूछते नहीं, हमें समझते नहीं, हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम जानबूझ के भूल जाते हैं। और एक चीज करके समाप्त करते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों का जो ऑब्जेक्ट है जिससे हमें ग्रेटिफाई मिलता है, इंद्रियों को खुशी मिलती है, उन चीजों से डिटैचमेंट होना भी ज्ञानी का लक्षण है। इट इज अबाउट द लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर साउंड, वो आप जानते हैं। ध्यान रखिए, जैसे पहले कृष्ण ने गीता में दूसरे चैप्टर में बताया, हमने डिस्कस किया, अगर आप जो ऑब्जेक्ट, सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट हैं, जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप किसी कारण से आप इसको छोड़ते हैं, डर के कारण छोड़ते हैं, या लालच के कारण छोड़ते हैं या किसी के कारण से अगर आप छोड़ते हैं तो वो आपको हिपोक्रेट बनाएगा, वो आपको छुप के करने के लिए प्रेरित करेगा, वो आपको चोर बनाएगा, वो आपको साधु कम बनाएगा अगर आप उसको छोड़ देते हैं, आप छुप के करेंगे। पर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि उसकी एपेटाइट ही खत्म हो जाए, उसकी चाह इच्छा ही खत्म हो जाए, फिर कोई कुछ भी करे आपको बदल नहीं सकता। महात्मा बुद्ध को उसके मां बाप ने जब पता चला कि इस बचपन से इसके अंदर सिम्टम है डिटैचमेंट, किसी में एंजॉय नहीं करता है, उठपटांग सवाल उठपटांग, इसीलिए कि आम आदमी को अच्छे सवाल पूछना उठपटांग लगता है। बच्चा जब मां बाप को बोलता है कि आप कहते हो सच बोलो, आप भी तो चार बार झूठ बोलते रहते हो, आप कहते हो टीवी मत देखो, आप भी तो 8 घंटे से टीवी में चिपके रहते हो, तो बुरा लगता है, अटपटा लगता है, क्योंकि जनरली जो चीजें हमें सूट नहीं करता वो हमें अटपटा लगता है। तो बुद्ध के बचपन में जो साइंस दिखने लगे, मां बाप को उठपटांग लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फोर्ट को बहुत बड़ा किया, बड़े बड़े दीवार चढ़ाए, उसके अंदर दुनिया के भोगने लायक सारे सामान रखे, शराब से लेकर मांस से लेकर गाना नाचना प्रोस्टिट्यूट सब रखे कि बुद्ध सिद्धार्थ एंजॉय कर सके, वो भूल जाए डिटैचमेंट को, वो अटैच्ड हो जाए, वो एंजॉय करने लगे लाइफ को। उसको बाहर जाने की अलाउ नहीं था, 24 घंटे उसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो करो यही करो, जो चाहिए दो, खाने पीने सोने सर जो भी ड्रग जो भी चाहिए। एक दिन गलती से बाप पापा उसके घर में नहीं थे, वो सारथी के साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा, एक ही दिन निकला था जी, देखा एक बूढ़े आदमी को, पूछा ये कौन है, क्योंकि बुद्ध को कभी उन्होंने दुनिया की दुख दिखाया नहीं था, बोली बुढ़ा आदमी होता है, चल क्यों नहीं पाता है जी, सबको ऐसा होना पड़ता है, एक एज आता है जिसके बाद आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा ये सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा, बिल्कुल होगा, आपके साथ होगा। ये कौन है, एक डेड बॉडी ये लोग ले जा रही, ये क्या है, क्योंकि कोई मर गया, ये मरना क्या होता है, अभी सबको करना मरना पड़ता है, कहां जाते हैं किसी को नहीं पता, बस आप कुछ कर नहीं सकता, इसको क्या करेंगे जला देंगे, ये क्या है जी, ये मां बच्चा पैदा कर रही है, वो क्या है, बच्चे ऐसे सबके साथ जो भी पैदा हुआ ऐसे होती है, तो चिल्ला क्यों रही है, क्योंकि दर्द होता है। बुद्ध ने देखा, वापस आया, उसी हफ्ते वो आधी रात को छोड़ करके चला गया, कोई नहीं रोक सका, ना शराब ना पत्नी ना राज्य सुख ना कोई रॉयल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं रोक सका। अगर ऐसा एपेटाइट को ही आप रोक दो, अगर आपको मीठा खाने में आपको इच्छा ही नहीं है, आपको कितना बढ़िया बढ़िया चीजें परोसा जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रसगुल्ले को भी वैसे ही खाओगे जैसे सूखी रोटी खाते हो, सूखी रोटी को भी वैसे ही खाओगे जैसे खाते हो, अंदर से अगर वार, वो कौन जो कर सका वो ज्ञानी है, इसीलिए ज्ञानी का लक्षण है वी कन्विंस दैट द सेंसेस हैव टू सबसर्व योर बेस्ट इंटरेस्ट। ईश्वर ने हमें इंद्रियां दी है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकें, पर प्रॉब्लम है जब इंद्रियां हमारे द्वारा अपने इंटरेस्ट सर्व करते हैं तो हम उनके सबोर्डिनेट बन जाते हैं, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। बाकी की चीजें हम अगली बार करेंगे, अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।